ناظرین کرام، آپ مسلسل اچھے اور بہترین کام کے عنوان سے گفتگو کو سن رہے ہیں. میں آپ سامعین و ناظرین کے ذہن تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اور پہنچا رہا ہوں کہ صرف جسمانی طور سے کام کو انجام دینے ہی کو کام نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ برائیوں سے اپنے کو بچا لینا، بدی سے اپنے کو دور رکھنا، گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھ لینا، یہ بہترین کام ہوتا ہے. اس سلسلے میں گناہ کو پہچاننا، گناہ کو جاننا ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم جانیں کہ گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے، بدی کیا ہے، اور اس سے ہم اپنے کو بچا لیں تو اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں یہ بہترین کام ہوگا. اور ہر آدمی بہترین کام کرنا بھی چاہتا اور بہترین کام کر کے صاحب عزت بننا چاہتا ہے. میں نے ان گناہوں کا تقریباً تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ میں جنہیں بڑا گناہ کہا گیا ہے. پھر میری باتوں کو سنیے گا اور توفیق ہو تو کتابوں کا مطالعہ کیجیے گا، صاحبان علم سے پوچھیے اور جانیے کہ وہ کیا ہیں جنہیں مذہب نے گناہ کہا ہے، تاکہ آپ اپنے کو ان گناہوں سے بچا سکیں اور بہترین کام کرنے والے کہے جا سکیں اور عزت اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں اور امت مسلمہ کی نگاہ میں آپ کی بڑھتی جائے. میں آگے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ گناہ دو طرح کے ہیں، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ. حالانکہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ شاید نسبت سے کہا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی گناہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ جس نے اسے گناہ کہا تھا اور منع کیا تھا کہ نہ کیا جائے وہ بڑی ذات ہے. بڑی ذات کے بات کو ٹھکرا دینا ہی بڑی بات ہوا کرتے ہیں. لیکن اسی اعتبار سے ایک اور بھی تقسیم ہے گناہ کی، جس کو بھی سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ گناہ جو اصلاً معاف نہیں کیا جا سکتا، اور ایک وہ گناہ ہیں جو معاف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، اور ایک وہ گناہ ہے کہ بس معاف کر دیا جائے گا، اس پہ امید بھی رکھی جا سکتی ہے اور خوف بھی رکھا جا سکتا ہے. وہ گناہ جو اصلاً معاف نہیں کیا سکتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، مشرک ہو جانا. اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ سارے گناہ کو معاف کرے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. لہٰذا ہر انسان کو اس بات کا ہر لحظے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نے کردہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک قرار نہ دے دیں. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اس میں کوئی اس میں شریک نہیں ہے. ذات اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ ابدی ہے، ازلی ہے، کوئی دوسری ذات ابدی اور ازلی نہیں ہے. ابدی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہم کوئی اس کے لیے زمانہ معین نہیں کر سکتے کہ فنا زمانے سے ہے، ہمیشہ سے ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق، صرف مخلوق ہے، اس کا وقت معین کیا جا سکتا ہے کہ فلاں زمانے سے ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے زمانہ معین نہیں کیا جاتا. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا، تنہا، یگانہ ہے، کو اس میں شریک نہیں، وہ ابدی ہے اور ازلی ہے. جب کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تب بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس کو ازلی کہا جا سکتا ہے. ساری مخلوقات کے لیے چاہے کتنے ہی طویل زمانے تک رہنے والے ہوں مگر اس کی ایک انتہا ضرور ہے. اللہ کی ذات کے لیے نہ ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے، وہ غیر محدود ذات ہے، ہم اس کو محدود کر نہیں سکتے. یہ صحیح ہے کہ انسان جو ہے جب سوچتا ہے، کسی چیز کی گفتگو ہوتی ہے تو ذہن جو ہے سوچنے لگتا ہے. ہم اگر کسی شہر کی توصیف بیان کریں، کسی تاج محل کی مثلاً عمارت کی توصیف و تعریف بیان کریں، تو تاج محل جیسے جیسے ہم بیان کرتے جائیں گے ایک نقشہ ذہن میں آتا چلا جائے گا. ایسی اگر ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ بیان کریں تو ہمارا ذہن جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. لیکن جیسی بھی ذہن تصویر بنائے وہ معبود نہیں ہے، وہ تو ذہن کی مخلوق ہوئی، ہم ذہن میں اپنے اس کو تصور کر رہے ہیں، وہ تصور اللہ نہیں ہے. अल्लाह के साथ वो नहीं हो सकता, हमारे दहन की मखलूक है, अल्लाह इससे कहीं आला और अफजल है और बेहतर है, उनको हम अपने दहन में ला ही नहीं सकते, अल्लाह महदूद ज़ात है। बल्कि यूँ भी कहा जा सकता है कि छठे इमाम के सामने किसी ने अल्लाह अकबर कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उनका है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मसलन चंद बराबर की लकड़ियां हों या बराबर की न हों, लकड़ियां हों उसमें एक बड़ी और एक छोटी, जो सबसे बड़ी हो तो आप कहें कि ये सबसे बड़ी है। इस सबसे बड़ी कहने का मतलब क्या होता है कि ये इन्हीं सारे में ये भी शरीक है, मगर ये एक बड़ी है बाकी छोटी हैं। अगर अल्लाह को भी यही कहना चाहते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जितनी मखलूक है उसमें जो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब कि अल्लाह को मखलूक में शुमार किया उसमें ला करके सबसे बड़ा कहना, नहीं, अल्लाह जो है ऐसा नहीं है कि आप सब में ला करके उसको बड़ा कहें, अगर ऐसा है तो शरीक करार दे देंगे उसका, मुशरिक, वो मखलूक आपने बना दिया कि सब में वही मगर सबसे बड़ा नहीं। फिर किसी पूछने वाले ने पूछा कि फिर बड़ा होने का मतलब क्या होता है, तो इमाम ने फरमाया कि इसके बड़े होने का मतलब ये होता है कि अकबर मिन यूसुफ, कि अल्लाह इस बात से भी बड़ा है कि हम उसकी तारीफ़ कर सकें, यानी हमारे बस की बात ही नहीं है कि अल्लाह की हम तौसीफ़ या तारीफ़ कर सकें, बता सकें, यह कतन हो ही नहीं सकता। उस होता उस चीज़ के लिए जो मखलूक हो, अल्लाह मखलूक नहीं है, उसकी हद नहीं है, जो महदूद होती है उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको बयान किया जाता है, जो महदूद ना हो उसकी तारीफ़ की ही नहीं जा सकती, उसको बताया नहीं जा सकता। लिहाजा अल्लाह की तारीफ़, बस अल्लाह को सिर्फ एतबार से पहचानना चाहिए है कि वही मबदा अफ़आल है, वही मबदा फ़ैद है, वही मबदा बरकत, यानी हर चीज़ की इंतहा उसी तक पहुँचती है, किसी और तक नहीं पहुँचती। इस एतबार से अगर आदमी अल्लाह को पहचान रहा है तो यकीनन उसने अल्लाह को पहचाना है। अलबत्ता इसमें भी बहुत सारी गुंजाइश थी कि इंसान जो है गुफ्तगु करे, बाज़ चीज़ें कहीं कहीं से गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे मसला आदमी कह रहता था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये कहना सही नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर जो कोई पत्ता नहीं हिलता, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कोई गुनाह कर रहा है तो आप ये कहें कि ये गोया अल्लाह ही उससे गुनाह करवा रहा है, जब यह पत्ता नहीं हिलता अल्लाह के हुक्म के बगैर तो बंदा कैसे हिलेगा, बंदा कहाँ से कोई काम कर लेगा, इंसान कहाँ से कोई काम करेगा, जब अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ हिलती ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। तो जब इंसान इस तरह की बात बोलता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तसव्वुर गलत है। असल में इसको मजहब ने दीन ने यूँ बताया है कि अल्लाह के इल्म के बगैर, अल्लाह के इल्म से बाहर कोई चीज़ नहीं है, एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह के इल्म में है, एक बंदा भी गुनाह करता है तो अल्लाह के इल्म में है, एक बंदा अच्छा करता है तो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का इल्म दोनों अलग अलग चीज़ है। अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं दे सकता है कि ये करो, अल्लाह बुराई की तरफ लेके नहीं जा सकता है कि ये करो। अगर अल्लाह के लिए मानने लगे कि अल्लाह ही बुराई करवाता है तो फिर जहन्नम काहे के लिए, जब अल्लाह ही ने करवाया तो सज़ा हमको क्यों मिलनी चाहिए, जिसने करवाया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एक इंसान जो है कत्ल करता है किसी को और एक शख्स ने कत्ल करने का हुक्म दिया है, तो जिसने कत्ल करने का हुक्म दिया वो भी मुजरिम होता है और जिसने कत्ल किया वो भी मुजरिम होता है। तो अगर अल्लाह ही बुराई भी करवाए तो नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह भी इसमें शरीक हो जाए, और अल्लाह इससे कहीं बाला और बरतर अज़ीम ज़ात है, उसकी तरफ हम किसी नस्बत को नहीं दे सकते हैं। लिहाजा ये मशहूर है मुसलमानों में, अरे अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये गलत है तसव्वुर, इससे गलत मैसेज गलत पैगाम पहुँचता है। अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह का इल्म, कि अल्लाह के इल्म से बाहर कोई चीज़ नहीं है, या जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह जानता है। अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी वो जजा देगा, बुरा कोई कर रहा है तो वो उसकी सज़ा देगा, अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है, अगर वो तौबा नहीं करता है, वरना अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। जैसे इंसान अपनी गलती की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है, बड़ा भी है। तो एक जिसको अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता गुनाह, वो शिर्क है, शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जैसे अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से अकेला है, वैसे अपनी सिफात के एतबार से भी वह अकेला, यानी जैसे मसलन मैं हूँ, आप हों, कोई आप में से किसी को कहे कि बड़ा बहादुर है, बड़ा आलिम है, तो आलिम होना और बहादुर होना इंसान की सिफत है कि वह उसमें पाई जाती है। सिफत वो होती है जो इंसान में नहीं थी फिर आई। मसलन एक आलिम उसे कहते हैं जो पैदा होते ही आलिम नहीं था, उसने इल्म हासिल किया तब आलिम हुआ। और कभी बीमारी वगैरह लग जाए तो वह इल्म जा भी सकता है, कुछ उसको याद ही नहीं रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक इंसान ने कसरत और मेहनत की तो उसके जिस्म में ताकत आई, और कभी किसी वक्त बीमारी के लगने से ताकत खत्म हो सकती है। तो इंसान में इस तरह की सिफत एक अलग चीज है जो उसमें अलग से आती है। हम आलिम नहीं थे और इल्म आया, और किसी ज़माने में हमारा इल्म हमसे अलग भी हो सकता है। हम कमज़ोर थे, मेहनत मशक्क़त की ताकत पैदा हुई, और फिर कभी ये ताकत जा भी सकती है, फिर कमज़ोर हो सकते हैं। अल्लाह अगर आलिम है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने भी कहीं से इल्म हासिल किया, उसकी ज़ात अलग हो और उसका ये सिफत जो है। अल्लाह आलिम है का मतलब उसकी ज़ात ही ऐन इल्म है, उसकी ज़ात ही ऐन कुदरत है। ऐसा नहीं है कि पहले वो नहीं था बाद में आया और किसी वक्त जो उसका इल्म या उसकी कुदरत उससे अलग हो जाएगी, कतन ऐसा नहीं, बल्कि वही ऐन कुदरत, वही ऐन इल्म जो है उसकी ज़ात है। ज़ात और सिफत में कोई फ़र्क यहाँ नहीं कहा नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ है सिफात से, चाहे हम उसको अलीम कहें चाहे अल्लाह कहें, चाहे उसको हम कदीर कहें चाहे अल्लाह कहें, एक ही चीज़ है। उसके नाम 99 हैं या 1000 हैं, नाम उसकी सिफतें हैं, सिफत ज़ात जो है उसकी अल्लाह है, इसमें ज़ात उसका जो है अल्लाह है, और बाकी सब जो है इसमें सिफत हैं, यानी उसकी सिफत के साथ सिफत से हम उसको तस्करा करते हैं और जिक्र करते हैं, मगर ज़ात और उसकी सिफत अलग अलग नहीं होती है बल्कि एक ही और एक होती है। ये भी इल्म कलाम में हमारा मौजू नहीं था, सिर्फ इशारा कर दिया कि अल्लाह जिन गुनाहों को माफ़ करे नहीं करेगा उसमें एक शिर्क है, जिन गुनाहों को माफ़ कर सकता है मगर वो मशरूत हैं एक शर्त के साथ, मतलब गुनाह हमने किया, एक बंदे को हमने सताया, उसके माल को गस्प कर लिया, सब कुछ किया, तो हमने जिस पर गुनाह जुल्म किया उसके माल को गस्प किया है, जब तक माल को वापस न कर दें या जब तक अपने जुल्म की माफ़ी न मांग ले और जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक ये गुनाह माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह के हुजूर में तौबा इस्तफार करने से माफ़ होने वाला नहीं है, बल्कि खुद जो है उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। और जो अल्लाह के हक में हमने जो है गुनाह किए हैं, उसने हमसे कहा था नमाज़ पढ़ो, वो उसका हक था, हमने नमाज़ नहीं पढ़ी, उसने कहा कि रोज़ा रखो और ये अल्लाह ही का हक था मगर हमने रोज़ा नहीं रखा, जो उसके हुकूक हैं हमारे ऊपर हमने उसको अदा नहीं किए हैं, तो इसमें ना उम्मीद भी नहीं होना चाहिए है और बिल्कुल बेखौफ भी नहीं होना चाहिए है। यानी अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए कि अल्लाह इसे माफ़ भी कर सकता है, और डरते भी रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुनाह बाकी रह जाए और अल्लाह माफ़ ना करे। तो खौफ व उम्मीद के दरमियान रहना चाहिए है, मायूसी गुनाह है मायूस ना हो, लेकिन डर भी रहना चाहिए है कि पकड़े भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीन गुनाह और भी हैं, मगर मुझे एक ख़ास चीज़ आज बताना चाहता हूँ आप ज़रा से, और वो ये है कि गुनाह भी यानी बुराई जिन लोगों से होती है अफराद के एतबार से भी फ़र्क पड़ता है। एक समाज और माशरे में एक ऐसा इंसान है जो बाइज़्ज़त है, जिसका लोग एहतराम करते हैं, लोगों को अच्छी निगाह से देखते हैं, अगर ऐसा शख्स गुनाह करे और एक मामूल के मुताबिक आम इंसान है वो गुनाह कर रहा, एक ये, दूसरे एक वो इंसान गुनाह कर रहा जिस जो गाफिल था गुनाह से या उसकी अहमियत की तरफ मुतवज्जे नहीं था, जाहिल था, जानता नहीं था, वो गुनाह कर रहा, और एक बिल्कुल यकीनी तौर पे जानता है कि गुनाह है, वो आलिम है, वो आगाह है, ये जानता है कि बुरा है, उसके इकाब और अज़ाब से भी वाकिफ है, वो अंजाम दे रहा है, सब में फ़र्क पड़ता है। मैं आज से बताना चाहता हूँ आपसे कि जिनकी शख्सियतें अजीम होती हैं, जो ओहदे और इज्जत के एतबार से बड़े होते हैं, जिनका समाज और माशरे में उनकी एक हैसियत होती है, हो सकता है कि एक इंसान एक महल्ले में बाहैसियत हो सकता है कि एक इंसान जो है अपने पूरे ज़िले में जाना जाता है और पहचाना जाता है इज्जत और वक़ार के एतबार से, और एक हो सकता है कि इंसान पूरे मुल्क में जाना जाता है और उसकी इज्जत है, और एक इंसान हो सकता है कि एक ही नहीं कई मुल्कों में जाना पहचाना जाता है, एक इंसान वह कि पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है और उसकी इज्जत है, तो उसी इज्जत और एहतराम के एतबार ही से उसके काम को भी तौला जाता है। एक वो इंसान जिसे कोई नहीं जानता है, बस मोहल्ले के दो चार आदमी जानते होंगे, अगर वो कोई बुरा काम करता है कितनी उसकी अहमियत होगी, अरे लोग भूल गए, दो चार आदमी भूल गए या दो मतलब टोक दिया, कोई इतनी अहमियत नहीं, तो कुछ आसार भी मरतब नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई वो इंसान जो मशहूर है, जो पहचाना जाता है, जिसकी इज्जत हो, अगर वो एक लिबास भी पहनता है तो लोग कोशिश करते हैं कि हम भी वैसे ही लिबास पहने, अगर वो किसी खास तरीके से अपने رفتار بناتا ہے چلنے کے لیے تو لوگ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگر بولنے اپنے بال کا ایک ڈھنگ بنا دے تو لوگ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں چونکہ وہ دنیا میں یا ملک میں جانا جاتا اور اس کی عزت ہے تو جو بھی اپنے لیے وہ انتخاب کرتا ہے لوگ اس کی نقل کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے تو ایک دوسرے لوگ بھی ہم کو اس نگاہ سے دیکھیں گے، یعنی اپنی عزت محسوس کرتا تبھی اس کو نقل کرتا ہے. وہ چاہے برا کام کر رہا ہو، ممکن ہے مذہب اس کو پسند نہ کرتا ہو، مذہب اس کا حکم نہ دیتا ہو، وہ بھی اس نے کیا تب بھی لوگ چونکہ اس کا نام ہے وہ پہچانا جاتا ہے، لوگ اس کے کسی نہ کسی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں. ایسے ہی اگر اس طرح کا انسان اگر مذہب کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو چاہے دوسروں کے لیے وہ چھوٹا گناہ ہو، دوسروں کے لیے اس کا عذاب مختصر ہو، دوسروں کے لیے اس کا نتیجہ اور اس کا اثر جو ہے مختصر، مگر وہ چونکہ انسان بڑا ہے اور عظیم ہے وہ اسے انجام دے گا تو بہت سارے لوگوں کے اس کے نقل کرنے کا، اس کو اختیار کرنے کا بھی امکان پایا جاتا اور نہ بھی پایا جاتا اور تب کی بڑی ذات، بڑی شخصیت، بڑی حیثیت والا ہے وہ اسے انجام دے رہا ہے تو اسی اعتبار سے اس کا عذاب بھی ہے. قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اس طرح کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر فلاں شخصیت اس کام کو انجام دے گی تو ہم اسے یہ عذاب دیں گے، اس عذاب میں مبتلا کریں گے، حالانکہ اسے چھوٹا گر کرے تو اس طرح کا کوئی عذاب نہیں ہے. اور ہر طرح اس چیز کو ہر انسان سمجھتا بھی ہے. مثلا فرض کیجئے ایک محلے میں محلے کا عالم دین ہے، امام جماعت ہے، پورا محلہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی عزت کرتا، اس سے مصافحہ کرتا ہے، وہ گلی میں نکلے اور ایک وہ زبان اختیار کرے جو عام بچے بد زبان لوگ جو ہیں زبان اختیار کرتے ہیں، ہر آدمی کو حیرت ہوگی، ارے مولانا صاحب، پیش امام صاحب یہ ایسا کر رہے ہیں. میں اپنی مثال دیتے یہ کہوں کہ مثلا فرض کیجیے کہ میں ایک سماج اور ایک معاشرے کا عالم دین، مجھے سمجھا جاتا، میں یہ عباقبہ اور عمامہ پہنی ہوں، میں یہی لباس پہن کر کے میں سائیکل چلانے لگوں سڑک پر، یہ لباس پہنے ہوئے، تو جو لوگ مجھے عالم مانتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو حیرت ہوگی، انہیں تعجب ہوگی، دس جگت وہ جا کر کے ذکر کریں گے، ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، چونکہ سائیکل چلانا کوئی گناہ نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سائیکل چلائی تو کون سا گناہ کیا، گناہ نہیں ہے، مگر اس لباس کے خلاف ہے، اس عزت کے خلاف ہے. اگر آپ کو چلانا ہی تھا، ضرورت ہی تھی تو کم سے کم اس لباس کو اتار دیتے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہوتے چلتے. اس میں جو ہے اس طریقے سے پہنے ہوئے چلانے میں عجیب لوگ کیا سوچیں گے کہ کون ہے کیا ہے اور اس طرح کے لباس پہنے سائیکل چلا رہے ہیں مثلا. تو انسان کی جتنی حیثیت اور عزت ہوتی ہے وہ کام جو عوام کرتے ہیں، اور وہ عوام کا کام ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ ہو، لیکن ایک خاص انسان ایک خاص عہدے اور خاص عزت پہ ہو تو عوامی کام سے بھی اس کو بچنا چاہیے، ورنہ لوگ سوچیں گے کہ یہ بھی ان کے برابر ہو گئے ہیں. جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے بلند نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا احترام اور اس کا احترام یا اس کی عزت باقی نہیں رہ جاتی ہے. اسی لیے گناہوں میں اس گناہ کا ذکر کیا جاتا ہے خاص طور سے جو شخصیتیں انجام دیتی ہیں، بڑے لوگ جسے انجام دیتے ہیں. یقین کیجئے کہ اگر کسی سماج اور معاشرے میں ایک انسان بہت ہی باعزت ہو، بہت ہی اس کا احترام کیا جاتا ہو، میں آج کے اس معاشرے میں اپنے ہندوستانی جیسے ماحول کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک انسان سارے عوام میں پہچانا جاتا ہے، ہر مذہب اور مسلک والے اس کو جانتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اگر وہ انسان اپنے مذہب کے اعمال کو علل اعلان انجام دیتا ہے تو قوم کے لوگوں میں اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ کرنے لگتے ہیں کہ ارے فلاں جو یہ دنیا میں اس طرح کے پہچانا جاتا اور دنیاوی اعتبار سے مشہور ہے مگر مذہب کو عمومی طور سے جو انجام دیتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہو، ایک وزیر اعظم ہو ملک کا، اور وہ وزیر اعظم یا وہ وزیر اعلیٰ یا وہ وزیر یا وہ بڑی شخصیت اپنے مذہب کے حکم پر علل اعلان عمل کر رہا ہو تو ان کے ماننے والوں میں اس کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، بے انتہا جذبہ پیدا ہوتا، احترام اس حکم کا پیدا ہوتا جس حکم پر اس نے عمل کیا ہے. کہ معمولاً اس طریقے سے جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں वो अपने मजहब के अहकाम से ज़रा दूर दूर रहने लगते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर जिसकी ज़्यादा इज्जत और अहमियत है वो अगर करने लगता है तो लोग, अरे हम उसके पहनावे की नकल करते हैं, उसके स्टाइल के लोग जो है नकल करते हैं, उस तरीके से पहनना, उस तरीके से चलना, उस तरीके से बोलना, उस तरीके से बाल रखने को फ़ख्र समझने लगते हैं। तो अगर वो मजहबी हुक्म पर अमल कर रहे हों या मजहब ने जिन्हें बुराई कहा उससे बच रहे हों, तो गोया खाली उनका बचना या उनका करना ये एक तरीके से तबलीग का ज़रिया हो जाता है दूसरों के नज़र में, कि जब इतना बड़ा इंसान इसको अंजाम दे रहा है और दूसरे लोग इसको ऐब नहीं समझ रहे हैं, बल्कि जो ऐब समझते हैं उनके लिए भी हिम्मत पड़ने लगती है इसको अंजाम दिया जा सकता है, वैसे ही अगर वो गुनाह करता है तो लोगों में जुरहत पैदा हो जाती है उस गुनाह करने के लिए। जब इतना बड़ा इंसान जो है, जो इतना मशहूर और फेमस इंसान जो इस काम को अंजाम दे रहा है, गुनाह कर रहा है, अपनी तरफ जा रहा है, तो दूसरे लोग भी बिला झिझक उसे करने लगते हैं और नस्बत दे सकता है, इतना बड़ा इंसान रहता है। इसीलिए किसी बड़े इंसान, साहिब इज्जत और साहिब वक़ार इंसान के लिए किसी बुरे काम के अंजाम देने की वजह से वो बुरा काम बड़ा बन जाता है और उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो माशरे में साहिब इज्जत होने का मतलब ये होता है कि वो उतना ही ज़िम्मेदार भी होता है कौम के लिए भी, और उतना ही ज़िम्मेदार होता है मजहब के पेश नज़र भी, कि मजहब भी उसको उसी एतबार से देखेगा। कहा जाता है, बल्कि हदीस में यह है कि क़यामत के दिन एक जाहिल के जितनी देर में 70 गुनाह माफ़ होंगे, उतनी देर में एक आलिम का एक गुनाह भी माफ़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो जाहिल था, वो नहीं जानता था, वह एक आम आदमी था, ना जानने की उसको सज़ा मिलेगी कि क्यों नहीं जानने की कोशिश की, लेकिन वो गाफिल था, वो जाहिल था, नहीं जान सका, एक आम इंसान था, उसने ये गलती ये गुनाह किया है तो उसके जितनी देर में 70 गुनाह माफ। आमतौर से 70 का लफ्ज़ भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो कसरत के माने में होता है, कोई गिन करके 70 नहीं होता, कसरत यानी कि बहुत सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, तब कहीं कहीं एक आलिम का एक गुनाह माफ़ हो सकता और हो सकता कि ना, यानी उसको हिसाब किताब के लिए बहुत देर तक खड़ा होना। क्यों? जब तुम्हारी लोग इज्जत करते थे, लोग तुम्हारे एहतराम करते थे, लोग तुम्हारी बातों को नकल करते थे, उसको अपने लिए दरस ज़िंदगी बनाते थे, तुम्हारी बातों को मानते, तुम जान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है तो यकीनन जो जल्दी माफ़ नहीं, माफ़ का अल्लाह करीम है, माफ़ कर सकता है, लेकिन बहुत देर तक हिसाब किताब के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं होता है कि इंसान जो फिर सही करे कि जाहिली रहें, जब जाहिली रहेंगे तो हमारे ज़्यादा ज़्यादा गुनाह भी होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा माफ़ कर दिए जाएंगे। नहीं, कहीं इंसान जो है, मैं ही कहूँगा कि ये भी बहुत बड़ा गुनाह होगा कि आप जान रहे हैं कि जाहिल नहीं रहना चाहिए और जान के जाहिल, तो ये भी जान करके गुनाह करना होगा, तो कम से कम इसी में इंसान को देर तक खड़ा होना होगा। तो खाली बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अपने को बनाने की कोशिश करना चाहिए कि हमको कैसा बनना है, कैसा होना चाहिए, वरना जहाँ फ़ायदे की चीज़ निगाह देख रही कि इसमें फ़ायदा है तो वही बनने की कोशिश करें, तो ये तो गलत बात है कि जाहिल के अगर गुनाह जो माफ़ ज़्यादा हो जाएंगे तो हम जाहिल ही रहें, हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं। नहीं, ये ख़ुद अलग एक बड़ा गुनाह होगा और इसके सजा ज्यादा हो सकती है। बहर कहने का मकसद यह है कि इंसान जितना बड़ा होता चला जाएगा अपने शोहरत इज्जत और दूसरे एतबार से, उतनी उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं, इसलिए कि उसके किरदार को, उसके अमाल को लोग जो है नमूने अमल करार देते हैं। मशहूर है यह हदीस में भी है कि अर्रायतो अला दीन मुलूकहिम, रायत का यानी अवाम का दीन क्या होता है? जो उनके रहबरों का दीन हो, जो रहबर का दीन होता है वही अवाम का दीन, यानी जो बादशाह हो, जो हाकिम हो, जो हुकूमत कर रहा है, वो जैसा कर रहा होता है लोग उसी की नकल करते हैं। जब हमारा रहबर, जब हमारा बादशाह, जब हमारा मतलब अब बादशाहत वगैरह तो रह नहीं गई, लेकिन जिसको भी हमने अपना रहबर बना दिया है, मुल्क वजीर आदम हो गया है, मुल्क सदर हो गया है, तो जो वो राज करेगा वो चीज़ राज होती चली जाएगी, जैसा वो करेगा लोग उसकी नकल करते चले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये कौमी एतबार से रहबर और मजहबी एतबार से भी रहबर होते हैं, फिरका और जमात के एतबार से रहबर होते हैं, तो जो रहबर होगा, जो कायद होगा, जो कर रहा होगा, वही जो है उसके पीछे चलने वालों के लिए वही नमूना होता है। तो अगर वो गलती करेगा तो उस गलती के नतीजे में पूरी कौम, उसके पीछे चलने वाले सारे सारे उस गलती में मुलव्वस हो जाएंगे। लिहाजा इनके काम को अहम गर्दाना गया है कि अगर तुम एक गुनाह कर रहे हो, तुमसे एक गलती हो रही है, तुमसे एक चीज़ बुरी हो रही है, तो तुम समझ रहे हो कि एक नहीं, तुम्हारे पीछे जितने चलने वाले हैं, जितने आने वाले हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होती है। इसलिए किसी एतबार से भी किसी को शोहरत या इज्जत हासिल हो गई है तो अपने को पहचानना चाहिए शख्सियत के एतबार से। और समाज और माशरे में अगर देखा जाए, समाज और माशरे में भी इंसान के माशरती ज़िंदगी का मतलब ही यही होता है, समाजी ज़िंदगी का मतलब ही यही होता है कि कोई इंसान अकेले जी ही नहीं सकता है, मिलजुल करके रहना है। एक बात मैं अपने सामने तक पहुँचाऊँ नाजरीन तक कि इस एतबार से भी सोचें कि अगर किसी को सज़ा दी जाती है तो उन सज़ाओं में एक अहम सज़ा का नाम है क़ैद तन्हाई। सज़ा में क़ैद तन्हाई कि ऐसे जेल में डाला जाए, ऐसी क़ैद में डाला जाए जिसमें वो अकेला रहे। तो अकेला रहना एक क़ैद है, अकेला रखना एक सज़ा है। अल्लाह भी यानी दीन भी, मज़हब भी, हमारा इस्लाम भी अकेले रहने को नहीं सिखाता है, बल्कि वो समाजी और माशरती ज़िंदगी सिखाता है। वो जिस चीज़ को इबादत भी करार देता है, उस इबादत में भी नहीं चाहता है कि इंसान अकेला अकेला रहे, बल्कि हर जगह बुला करके इकट्ठा करना चाहता है। नमाज आदमी अकेला पढ़े नमाज हो जाएगी, मगर ताकीद करता नहीं, मस्जिद बनाओ और मस्जिद में सब लोग जमा हों, उसको इकट्ठा होना चाहिए, साथ में आना चाहिए ताकि समाजी ज़िंदगी हो। और इसी तरीके से इंसान मसलन बहुत सारी इज्तमाई चीज़ों में अकेला भी कर सकता है, मगर अल्लाह चाहता है नहीं, इकट्ठा हो, अकेले ना हो। जब इकट्ठा होंगे तो एक दूसरे के हकूक का ख्याल होगा और उन हकूक को अदा करता जाएगा तो एक समाजी ज़िंदगी बनती है, एक समाज और एक माशरा बनता है। इंसान एक दूसरे को, हत्ता कि कहा गया कि अगर किसी से इख्तलाफ भी तुम्हारा हो गया है तो 3 दिन से ज़्यादा तुम्हें इस इख्तलाफ को बढ़ाना भी नहीं चाहिए, बोलना चाहिए है। और बोलने का आगाज़ सलाम से कर लो। इमाम से किसी ने पूछा कैसे हमारा दिल उससे इतना खट्टा हो गया कि बोलने का जी नहीं चाहता, तो फरमाएंगे क्या तुम्हें सलाम करना भी नहीं आता? अरे सलाम कर लो, वो जवाब देगा, जवाब देना वाजिब होता है। इस तरीके से मिला नहीं कुछ आता समाजी ज़िंदगी के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया था, कुरान ने कहा तआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा, कि तुम्हें हर नेकी और तकवा पर एक दूसरे का तआवुन करना चाहिए है, लेकिन बुराई पर एक दूसरे का तआवुन नहीं करना चाहिए। जहाँ अच्छाई पर तआवुन करना अच्छा काम है, वहीं बुराइयों से बचाना अच्छा और बेहतरीन काम होता है। अल्लाह हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अनायत फरमाए ताकि अच्छे काम करने वालों में हमारा शुमार हो सके। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह।